अब आगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, जो कह लीजिए कि हम सब के लिए बहुत सारे मॉरल्स एंड लेसन्स लेकर आता है, और वो क्या है, दूसरा बड़ा मार्का यानी अहद। तारीख इंसानी में जब भी कभी मुस्बत व मनफी नज़रियाती कुव्वतों का तसादुम होता है, यानी वो आपस में टकराती हैं, और एक इंसानियत को रास्ती और फलाहो तरक्की की राह पर ले जाने के लिए उठाना चाहती है, कौन थी ये नबी सल्लम की जमात, और दूसरी आबाई निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के दर पे होती है, ये कौन थे, कुरैश मक्का। तो ऐसे तसादम में बड़ा जोश व खरोश काम करता है इस्लाम, और जाहिलियत की आवेजिश ने मार्के उहद में ऐसे ही गैर मामूली जोश व खरोश का समा कर दिखाया। बात समझ रहे हैं? देखिए, पानी पत्थरों से टकराता है ना, तो ऐसे ही होता है। जब एक तरफ हक हो और एक तरफ बातिल हो, ऐसे वक्त में हकीकत में लोगों को वाकई सर फोड़ना पड़ता है, और ऐसे वक्त में महसूस होता है कि हम अपने आप को एक ताकत और एनर्जी के साथ महसूस करते हैं। तो अब मार्के बदर के बाद कुरैश के साथ क्या हुआ? कुरैश को मार्के बदर में जो नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचे थे, इनके अलावा इक्तसादी चोट सख्त कारी लगी थी, यानी 2.5 लाख दिरहम से जायद कैदियों के फिदिये में देने पड़े। जी देखिए, अल्लाह ऐसे इस्लाम की मदद करता है। आप एक दर बंद करता देखे, होता देखे, दूसरा खुद ही खुल जाता है। अब ये एक गैर महसूस तरीके से इस्लाम को फ़ायदा हो रहा है ना। जाहिर बात है कि जो चीज़ नबी सल्लम के हाथ में आती थी वो इस्लाम को ही मिलती थी ना। तो अब फिदिया आया, या कहीं से जिजिया आता था, या माले गनीमत आता था, तो इस्लाम मजबूत होता था। यहाँ आप देखिए कि कुफर के पैसों से अल्लाह इस्लाम को मजबूत कर रहा है, ये भी अल्लाह की सुन्नत है। इन्वेंशंस कुफार की हैं, आज फ़ायदा मुसलमान उठा रहे हैं। कहाँ थे हम आईफोन बनाने वाले और कहाँ थे हम ऐप्स बनाने वाले? अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को काम में लगा दिया, क्यों? कि मेरे बंदों को बड़ा काम है, तुम इनके लिए मशीनें, गैजेट्स, फ़ोन्स बनाओ और ये इससे काम लेंगे। इस वक्त सिर्फ अगर हम काम ही लेते रहे ना इन चीज़ों से, तो इंशाल्लाह ये सारी टेक्नोलॉजी इस्लाम की नशरोइशात में मददगार हो सकती है। फिर काफ़िले के लंबे रास्ते से घूम कर आने की वजह से मसारफ बढ़ गए, ये भी आप पीछे पड़ चुके। अगर सीधे सीधे आ जाते तो डिस्टेंस कम, तो आप खुद जानते हैं कि लंबा रूट लेकर जाने में पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, और रास्ते का खर्च, खाना पानी भी बढ़ जाता है, और नफ़े की मकदार पहले से कम रही, प्रॉफिट फिर कम हो गया। ज़ाहिर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट तो कम हो गई। और ये भी एक याद रखना चाहिए, कोई भी काम करें, बाज़ लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और इतना एक्सपेंस कर देते हैं कि प्रॉफिट जितना भी हो वो खर्चों और अखराजात में निकल जाता है। तो ये भी एक साइड इशू है कि अखराजात को कम से कम रखना चाहिए। इस समर पर बढ़कर ये कि आइंदा के लिए निज़ाम तिजारत मुस्तकिलन ख़तरे में पड़ गया, क्योंकि अब उनको मदीना से गुजरना मुश्किल लगेगा, और अगर मदीना का रूट छोड़ते हैं तो रूट बहुत लंबा हो जाता है मक्का से शाम जाने का। कुरैश के तिजारती काफ़िले से 1 लाख दिरहम की चांदी मुसलमानों ने जब्त कर ली। हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान बैनुल अक़वामी तिजारत की जितनी भी नकलो हरकत होती थी वो यमन और मक्का के रास्ते से होती थी, कुरैश मक्का के वास्ते से होती थी, और कुरैश मक्का अपने मुआहदाती निज़ाम के बल पर खफारे का इंतज़ाम करके खासी बड़ी कमाई कर रहे थे, जिसे आजकल टोल कहते हैं ना, खासी बड़ी कमाई करते थे। ताइफ और दूसरे इलाकों की तिजारती आमदनी दरकुनार रखते हुए, यानी एक साइड पे करते हुए, महज शामी राह से कुरैश को 2.5 लाख अशरफी सालाना की आमदनी होती थी। अब मक्का के सर पर एक खौफनाक इक्तसादी बहरान मंडला रहा था। इन हालात में बदर के इंतकाम का लावा अंदर ही अंदर खौलने लगा, यानी आज की ज़ुबान में कह ले कि किसी मुल्क की सरहदें या वहाँ की पोर्ट खतरे में आ गई है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में पोर्ट है ना, ग्वादर है, कराची है, और इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से जाने वाले जहाज़ किसी दुश्मन के इलाके से गुजर के आगे जाएं तो मुस्तकिल ख़तरा होगा। बस यही बात है इधर समझने की। नए मार्के के लिए बहुत जल्द तैयारियों का आगाज़ हो गया। काफिला शाम से हासिल शुदा मजमुई मुनाफा जंगी फंड में ले लिया गया। अमर जहमी और मुसाफे जैसे नामवर शोरा ने अपने फन लतीफ़ से पूरी तरह काम लेकर जंग की आग भड़काई। मक्का की औरतों ने अपने भाइयों और बेटों की मौत के जो जख्म खाए थे, इनकी ठेसों से बेताब होकर वो मन्नतें मान रही थी कि आइंदा जंग में वो मुस्लिम शुहदा का खून पियेंगी। यानी जज्बा इंतकाम भड़क रहा था। चुनाचे अमलन फ़ौज के साथ बड़े बड़े घरानों की मुमताज़ औरतें मैदान जंग को रवाना हुईं। मसर हिंद, उतबा की बेटी, अबू सुफियान की जौजा और अमीर माविया की माँ, ये एक औरत। फिर इसी तरह उम्मे हकीम, इकरमा बिन अबी जहल की जौजा थी। फातिमा जो हज़रत खालिद की बहन थी, और बिरजा मसूद सकफ़ी, रईस ताइफ की बेटी थी, और रबता अमर बिन अलास की जौजा थी, और हन्नास हज़रत मुस्सब बिन उमैर की वालदा थी। ये सारी औरतें उसमें मौजूद थीं। कुरैश ने अपनी रज़ा कराना, यानी वॉलंटियर करने वाले, यानी जो अपनी खुशी से नेकी करते हैं, सिपाहियों को तैयार करने के साथ साथ अहाबीश को भी साथ मिला लिया था, यानी साथ के जो छोटे छोटे कबीले थे, गिरोह थे, उनको भी। नीस अमर बिन अलास, अब्दुल्ला बिन अलज़बरी, हबीरा बिन अबी वाहब, मुसाफे बिन अब्द मनाफ और अमर बिन अब्दुल्ला जहमी को मुख्तलिफ अरबी कबाइल में मदीना के खिलाफ तरगीब जंग दिलाने के लिए रवाना किया। इस तरह खासी ताकत जमा हो गई। 3,000 सिपाही, जिसमें 700 जरा पोश और 200 घुड़सवार शामिल थे, अपनी जगह दिल दहला देने वाली ताकत थी। फौजी ताकत का ये सैलाब था जो साल भर की तैयारी के बाद मक्का से रवाना हुआ। मदीना की चरागाहों में पहुंचा तो इत्मीनान से अपने जानवरों को सब्ज चारा खिला खिला कर मोटा किया, और कई दिन रास्ते में गुजार कर बुध के रोज़ ओहद पर उन्होंने पड़ाव डाला। देखिए, तैयारियां तो दोनों को ही करनी पड़ती हैं, चाहे कोई अल्लाह के रस्तों में निकले या फिर शैतान के। इसमें एक अमल की बात नोट करें, आपकी मेहनतें, कोशिशें, जिस्मानी तकलीफ, थकन, आना जाना, बैठना पढ़ना पढ़ाना, शुक्र कीजिए अल्लाह के रस्ते में। दुनिया के काम करने वाले भी थकते हैं, खर्च उनका भी आता है, मेहनत उनको भी करनी पड़ती है, लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला अपने रास्तों में भाग दौड़ करवा ले। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु दिल से नबी सल्लम के वफ़ादार और इस्लामी तहरीक के हामी थे, और इज़्ने ख़ास से मक्का में थे ताकि दुश्मन के कैंप के अंदरूनी हालात पर नज़र रखें। ये भी एक हिकमत अमली थी। देखिए, बज़ाहिर ऐसे लगता कि ये देर से मुसलमान हुए, लेकिन ये मक्का में रहकर वहाँ के हालात पर नज़र रखते थे, तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। उन्होंने तेज़ रो कासिद दौड़ाकर इन तैयारियों की इत्तला नबी सल्लम को पहुँचा दी। फिर नबी सल्लम को अपने ख़ास जंगी निज़ाम ख़बरें रसानी के ज़रिए 5 शवाल 3 हिजरी को इत्तला मिली कि कुरैशी लश्कर मदीना के पास पहुँच गए, और अरीत की चरागाह को इसके जानवरों ने साफ़ कर दिया है। फिर इसकी तादाद और इसकी कुव्वत के सही अंदाजे की रिपोर्ट भी पहुँच गई। शहर में रात को पहरे का इंतज़ाम फौरी तौर पर कर दिया गया। सुबह को आपने मुशावरत तलब की। बेशतर मुहाजरीन और अकाबर अंसार ने शहर में रहकर मुकाबला करने की तजवीज़ रखी, लेकिन बदर की शिरकत से महरूम रह जाने वाले नौजवानों ने जोश व खरोश से इस राय पर जोर दिया कि बाहर निकलकर मुकाबला किया जाए। हजूर हर दो नुक्ता हाय नज़र के सामने आ जाने के बाद घर तशरीफ़ ले गए और ज़रा पहनकर वापस तशरीफ़ लाए। गोया दूसरी तजवीज़ को आपने कबूल फरमा लिया। इस सिलसिले में न भूलिए कि अब्दुल्ला बिन उबई भी अव्वल ज़िक्र राय कलम बरदार था, और ये बात मालूम थी कि कुरैशी साजबाज करके तार इसकी ज़ात से आकर जोड़ते थे। दूसरी बड़ी जंग के मौके पर कुरैश ने इसे क़ारूरा मिला रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हकीकत को जानते हुए कोई बहस किए बगैर खामोशी से नौजवान तबके की राय कबूल कर ली। जुमे के रोज़ जुमा पढ़कर आपकी कमान में 1,000 सिपाही रवाना हुए। अब देखिए, उधर कितने, 3,000, इधर 1,000 मुस्लिम सिपाही। अब्दुल्ला बिन उबई भी साथ था। अपनी पहली तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद इसने शर अंगेजी की एक और कोशिश करते हुए एक ख़ास मौका महाज़ जंग बनाने के लिए तजवीज़ किया। ये तजवीज़ भी जब नबी सल्लम ने नामंजूर कर दी तो वो फितना घर मायूस हो गया, और मुकाम शौत से 300 हमायतियों को साथ लेकर वापस रवाना हो गया। इसे शिकायत थी कि हमारी बात जब नहीं मानी जाती और इख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा ही नहीं है तो हम क्यों लड़ें। नोट कीजिए, ये जो है ना, अंदर एक सर उठाता है फितना, हमारी तो मानी नहीं जाती, और हम तो राय क्या दें, हम जो कर लें आप ठीक है, हमें मीटिंग में आने की क्या ज़रूरत है। ये भी सिस्टम को ख़राब करने वाली बातें होती हैं। देखिए, आपकी राय मानी जाए ना जाए, आपको राय तो देनी है क्योंकि आप पार्ट ऑफ द टीम है। और दूसरी बात है कि अगर आपकी राय के बगैर कोई काम कर लिया जाए तो फिर आपको शैतान ये कहेगा, हम तो थे ही नहीं, हमने तो कहा नहीं, हमारी तो मर्ज़ी कुछ और होती। तो आके बैठ भी जाना ना राय देने और उस काम में से निकलने से बहरहाल बेहतर होता है। देखिए बड़ी खुशकिस्मती है हम सब की कि अल्लाह ने हमसे ये काम लिया हुआ है। इसकी जितनी कदर करेंगे, जितना इससे फ़ायदा उठाएंगे, अल्लाह आपसे और ज़्यादा काम लेगा। आज निकल कर देखिए, आपकी जगह आपसे दो अच्छे लोग आ जाएंगे। मैं निकलूँ, मेरी जगह चार आएंगे। कोई ये फ़ख्र ना करे, कोई ये ख्याल ना करे कि हमारे बगैर कुछ नहीं। और दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, इतने तो अच्छे लोग हैं, सब मिलजुल कर बहुत अच्छा काम करेंगे, काम को फ़र्क ना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह ने आपको जो एक नेकियों का, एक अच्छे काम का मौका दिया, वो काम जो है आपका निकल जाएगा उसमें से। तो आपकी कब्र को, आपके हशर को, आपके दिल के सुकून को, आपके इत्मीनान को फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अगर कहीं घुस चुके हैं, किसी जगह आपकी जगह बन चुकी है, तो जगह ना छोड़िए। अपनी जगह छोड़ने वाले खतरे में पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई दांत गिर जाता है ना मुंह में से, कई दफ़ा ऐसा होता है तो खाली जगह रह जाती है। तो जो डेंटिस्ट हैं वो कहते हैं फौरन इसकी जगह पे क्रोन लगवा लीजिए, नकली दांत लगवा लीजिए, वरना क्या होगा, वो खाली जगह थोड़ी देर में फिल होने शुरू हो जाएगी। या तो वहाँ मसूड़ा आ जाएगा, या जो उसके साथ के दो इधर उधर के दांत हैं ना, वो टेढ़े होकर उस जगह को ले लेंगे। और फिर जब आप दांत लगवाना चाहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी। अपनी जगह ना छोड़ें, बस सीधी सी बात है। उसको अच्छा करिए, उसको बेहतर कीजिए, उससे और आगे बढ़िए, लेकिन अपनी जगह ना छोड़िए। आज आप घर से जाएं, 1, 2, 4, 10 दिन आपके बगैर घर डिस्टर्ब होगा, आपके बाद कोई और आ जाएगा आपके घर में कि ये तो नखरा कर रही है, इनको जाने दीजिए, ये जाएं अपनी माँ के घर, रहें अपने भाइयों के साथ, हम दूसरी ले आते। फितरत का असूल है। आपने बचपन में साइंस में ये चीज़ पढ़ी होगी कि कभी खाली नहीं हुई जगह, जहाँ कुछ नहीं होता ना वहाँ हवा आ जाती है, तो वैक्यूम नहीं रहता। यानी हर खाली जगह में कुछ नहीं होता। और ये भी मशहूर है, खाली घरों में जिन भूत आ जाते हैं। तो सारी बातों का खुलासा, अपनी जगह ना छोड़ें। फिर उसके बाद आप देखिए कि इस मुनाफिकाना हरकत का बुरा असर दूसरों पर भी पड़ा, इसको भी नोट करें, ये भी अमल का नुक्ता है। देखिए, हम उसको मुनाफिकत कहें ना कहें, इस्लाम को तनहा छोड़ के अपने आराम को देखना, ये निफाक की एक किस्म तो है ही। और फिर एहसास ना हो इस बात का, ये उससे भी बढ़ के अपने घर के किसी ऐसे काम को जो बाद में भी हो सकता है, जिसके बगैर गुजारा भी हो सकता है, उसको अहम समझकर इस्लाम को तनहा छोड़ना निफाक तो है। अब वो किस दर्जे का है ये अल्लाह जाने और बंदा जाने, लेकिन इसका असर दूसरों पे पड़ता है। वो फलां भी तो छुट्टी करता है ना, फलां भी तो देर से जाता है, वो भी तो देर से आ जाते हैं ना, और वो भी तो जल्दी चले जाते हैं ना, तो दूसरे उससे असरअंदाज होते हैं। सिस्टम एक बंदे से नहीं ख़राब होता। जब एक बंदा थोड़ा सा ढीला होता है ना, तो दो तीन उसके साथ वैसे ही जहनी तौर पे सोचने लग जाते हैं, अच्छा इसके बावजूद भी तो काम चल ही रहा है ना। बस वो फिर कमरे में एक छोटा सा कचरा फैलाइए, थोड़ी देर बाद देखे 3-4 टिश्यू पड़े होंगे, बाद में छिलके भी पड़े होंगे। तो जब घर गंदा होने लगता है तो इसी तरह होता है। तो अल्लाह ना करे हम में से कोई भी ऐसा हो कि जिसकी वजह से दूसरे भी ढीले होने लगे। मसलन बनू सलमा और बनू हारिसा भी दिल शिकस्ता होकर वापस जाने लगे, लेकिन जीदार हस्तियों ने इनकी हिम्मत बंधाई। मदीना से बाहर जाकर मदीना में उतरने से कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों का जायज़ा लिया। मुतअद्दिद लड़के भी जज्बे जिहाद से सरशार होकर साथ चले थे। इनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस जाने का हुक्म दिया। फिर भी हर एक की कोशिश थी कि किसी तरह इसे शरीके मार्का होने का मौका मिले। राफे बिन हुदैच ने एड़ियों के बल खड़े होकर अपने आप को लड़ाई का अहल साबित किया, और सुमरा ने कुश्ती में राफे को पिछाड़ कर अपनी कुव्वत तस्लीम कराई। नई नस्ल का ये किरदार नतीजा था एक साले माहौल की तरबियत का। मुस्लिम खवातीन पर अगरचे जिहाद फ़र्ज ना था, लेकिन तहरीक के लिए नहायत ही नाजुक सूरत हाल को देख कर इनके जज्बात भी उमड़ आए थे। मुतअद्दिद खवातीन, मसलन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उम्मे सुलैत रज़ी अल्लाहु अन्हा जो अबू सईद खुदरी की वालदा थी, उम्मे सुलैम जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हो की वालदा थी, उम्मे अमारा और बाज़ दूसरी खवातीन मुस्लिम फ़ौज के साथ रवाना हुई। उन्होंने शानदार खिदमात अंजाम दी। मुस्लिम फ़ौज के कुल सिपाह 700 थी, जिसमें 100 अफराद ज़रा पोश थे। इनकी मानी कुव्वत थी कि ये अपने से चार गुनी और खूब आरास्ता फ़ौज से टक्कर लेने जा रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे ओहद को पुश्त पर लेकर महाज का नहायत बेहतरीन नक्शा तरतीब दिया। मुस्लिम बिन उमैर को इस्लामी इलम सपुर्द किया, यानी तफवीज़ किया, मुराद उनके हवाले किया। ज़ुबैर बिन अवाम रिसाले के अफसर मुकर्रर हुए। हज़रत हमजा गैर ज़िरह पोश सिपाहियों के कमांडर बनाए गए। पुश्त की तरफ जबले ऐनैन, जिसको जबले रिमात कहते हैं, इसके दर्रे पर 50 तीर अंदाजों का दस्ता मुतय्यन किया गया और इस दस्ते की क़यादत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हो को सौंपी गई। कुरैश ने भी बदर के तजर्बे की रोशनी में मुनज़्ज़म जंग के इस नए तरीके की तकलीद की, जिसे इस्लामी सिपाह ने इख्तियार किया था। मईमना यानी दाईं तरफ, राइट साइडेड, और मईसरा यानी बाईं तरफ, लेफ्ट साइड के सवारों और तीर अंदाजों के दस्ते अलग अलग कमानों में तरतीब दिए गए थे। इससे क्या पता चलता है? ड्यूटीज़ असाइन करना, लोगों को उनकी जगह देना, ये किसी भी प्रोग्राम, जंग या किसी भी इवेंट की कामयाबी की दलील होता है अल्लाह के हुक्म से। तो हमेशा लोगों को बड़ी क्लियर कट ड्यूटीज़ देनी चाहिए। लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारी सही तरह से पूरी ना की तो सबको नुकसान हो सकता है। जंग की तमहीद के तौर पर 14 कुरैशी औरतों की एक टोली ने हिंदा की क़यादत में दफ़ बजाकर जंगी राग अलापना शुरू किया। इस नगमे की जज्बाती तहरीक का अंदाज़ा इन अशार से हो सकता है। नखन बना तो तारक नमशी अलल नमारक अन तकबलु नानक अन तदबरु नफारक। हम आसमानी सितारों की बेटियां हैं और हम कालीनों पर आराम करती हैं। अगर तुम आगे कदम बढ़ाओगे तो हम तुम्हें गले लगाएंगी और पीछे हटोगे तो तुमसे अलग हो जाएंगी। एक तरफ ये शायराना रूमानी यानी रोमांटिक और शहवानी उकसाहट थी और दूसरी तरफ अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई चीज़ बायस तहरीक ना थी। ये भी नोट करें, मोमिन सिर्फ़ एक मकसद के लिए निकलता है, उसको कुछ मिले ना मिले, खाना मिले, पानी मिले, कोई अच्छी गाड़ी मिले, सफ़र में साथ कोई हो ना, वो कहता है मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ मुझे वही बहुत है। इसके बरक्स जो कुफर की नुमाइंदगी करते हैं उनको फिर इस तरह की चीज़ें, दुनिया के फ़ायदे और इस तरह का माहौल और इस तरह की बातें वाकई मोटिवेट करती हैं। तो अपने लिए एक बात याद रखें, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं अच्छे कामों के लिए तो ईमान को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें दूसरों की बातों से फ़ायदा होता है, वहर दिल मोमिनीन अलल क़िताल, अल्लाह ने अपने नबी को कहा था, और वाकई दूसरे के उकसाने से एकदम जज्बात उभर जाते हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं कि आपको हर रोज़ ही कोई मोटिवेट करे तो आप उठ के आए, और कोई मोटिवेट ना करे तो आप कहते हैं अब सुस्ती छा रही है, अब हमसे काम नहीं होता। डीमोटिवेशन ईमान के कम होने की अलामत है। आपका टेम्परेचर कम होता है ना तो जिस्म ठंडा होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, शुगर लो होती है, आपको महसूस होता है ना। इसी तरह याद रखें, नेकियों के कामों से आपका पीछे रहना और फिर मुतमईन भी होना, रिग्रेट भी ना होना, आई डोंट फील एनी रिग्रेट, गलत कहते हैं आप, यू शुड फील रिग्रेट। आपको एक ज़िम्मेदारी मिली, आपने वो छोड़ के कोई दूसरी ले ली, कोई रिग्रेट नहीं, अपने ईमान की फ़िक्र कीजिए। क्यों कि मोमिन को तो अपनी ज़िम्मेदारियों का बहुत मान होता है। बाज़ दफ़ा शैतान हमसे ये कहता है कोई बात नहीं, काम ही करना है ना नेकी का, कहीं भी कर लो, किसी के साथ कर लो। तो फिर वहाँ एक बड़ी नफ्स पे बोझ पड़ने वाली बात है कि बीवी बनना है ना, उसी की बनना है जिसकी है, घर चलाना है, अपना ही चलाना है, जाके किसी और का नहीं चलाना। तो याद रखिए कि इस्लाम में इस चीज़ की बड़ी अहमियत है कि आप किसके नाम से पहचाने जाते हैं, सोसाइटी में आप किसकी बीवी हैं, आप किसकी माँ हैं। हम उन्हीं ज़िम्मेदारियों को अपनाते हैं, या तो फिर कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ तो घर तोड़े, फिर बीच में वक्त गुजारें, फिर दूसरी जगह शादी करें, फिर कोई किसी की बीवी मानेगा ना। तो लिहाजा ये चीज़ जो अब्दुल्ला बिन उबई के इन लश्करों में दिखी और उन्होंने अपने आप को इन वक्त पे पीछे कर लिया और अब मैदान जंग में जाकर औरतों के ज़रिए से मर्दों के जज्बात को उभरवा रहे हैं, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, ये कुफर की हमदर्दियां हैं, ये उनके तौर तरीके हैं। आज भी लोग कहते हैं कोई नहीं, फ़ंड रेजिंग करनी है ना तो बुला लेते हैं, कॉन्सर्ट करा लें, कोई बात नहीं, पैसे जमा होंगे, अच्छे ही तो काम में आएंगे ना। तो याद रखिए, बुरा काम करके आप अच्छे काम को प्रमोट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। फिर इसके बाद यकजक मैदान में मशहूर अबू आमिर राहिब नमोदार होता है और अंसार पर अपने असर के जोम में इनको पुकारता है। अंसार इसके जोहद की हकीकत को खूब समझते थे, जिसका रिश्ता कुरैश के जाहली मुशरिकान और इंतहाई फासिद निज़ाम से जा मिला था। उन्होंने जवाब दिया कि ओ फासिक, हम तुझे खूब पहचानते हैं। इंसानी तारीख में ऐसी मिसालें कम ही मिलेंगी कि इसी अबू आमिर के बेटे हज़रत हंजला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिद पर हमला करने की इजाज़त तलब की, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे रहमत को ये पसंद ना आया कि बेटे की तलवार से बाप का खात्मा हो। इसके बाद तलहा के कसबल दिखाता हुआ ललकारने लगा। हज़रत अली ने भड़कर इसके वजूद को अचानक पेवंदे ज़मीन किया, यानी ख़त्म कर दिया। फिर इसका बेटा उस्मान इस शान से फ़ख्री अशार पढ़ता सामने आया कि इसके पीछे औरतों का एक गौल रिज़ गा रहा था, यानी सैड थिंग्स कह लीजिए। हज़रत हमजा की तलवार ने भी इसे ढेर कर दिया। बस अब मारका शुरू हो गया। यूँ तो सारी ही मुस्लिम फ़ौज अपनी किल्लत तादादो सामान की तलाफी वालेहाना ईमानी जज्बे से कर रही थी। इसको हाईलाइट करें, इसको कहते हैं ना कि मोमिन है तो बेतेख भी लड़ता है सिपाही। क्या पता चला, ईमान का जज्बा सारी कमियों को दूर कर देता है। इंतज़ाम पूरे नहीं, जगह अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, आप जोश के साथ काम कीजिए, दूसरों को खुद बहुत मज़ा आएगा। और रोशन मुस्तकबिल की लहरें कदामत के साहिल से खूब ही टकराईं, मगर हज़रत हमजा, हज़रत अली, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हुम की शाने जानबाजी सबसे बढ़कर नुमायाँ थी। आखिर जाहिलियत परस्तों के कदम उखड़ गए और इनकी रिज़्क़ ख्वान नाज़नीनें बदख्वासी में भाग गईं, तो छलावों की तरह गायब हो गईं। अभी इतनी मोहब्बत की बातें कर रही थी और जान पे पड़ी तो खुद भाग गई। यही होती है नफ्स परस्ती की मोहब्बत। मुस्लिम सिपाहियों ने महसूस किया कि बस अब बाजी तमाम हुई। बस उन्होंने दुश्मन को आइंदा के लिए बेसरो सामान करने का मकसद सामने रख के सामान जंग और रसद और दूसरी अशिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। महाज का निज़ाम टूट गया, हड़बूंग फैल गई, अफराद मरकजी कमांडर से बेतवज्जो हो गए, और गजब यह हुआ कि नाजुक तरीन उकबा नाके को तीर अंदाजों के इस दस्ते ने भी छोड़ दिया, जिसे ताकीद की गई थी कि वो फतह और शिकस्त किसी भी हालत में वहां से ना टले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज थे, अगर तुम देखो कि परिंदे हमारी बोटियां नोचे लिए जा रहे हैं तो भी तुम इस जगह से ना टलना। इस लफ्ज़िश का बड़ा खौफनाक खमियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ा, और जैसे इनके कदमों को चूमती हुई फतह रूठ कर पीछे हट गई। कुरैशी फ़ौज में खालिद जैसा ज़ीरक यानी अक्लमंद और बहादुर जंगी लीडर मौजूद था। इसने दूर ही से पूरे महाज का समा देखा, तो चंद सवारों को साथ लेकर पहाड़ के पीछे से होकर इसी नाजुक उकबा नाके जिसको जबले ऐनैन कहते हैं, जो खाली पड़ा था, अचानक हल्ला बोल दिया। अब तो कुरैशी फ़ौज के मज़ीद दस्ते भी पलट कर हमलावर हुए। अपनी फतह के सुरूर से मुसलमान चौंके तो देखा कि तलवारों की बर्क खाए बेताब सरों पर चमक रही हैं। इधर दुश्मन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए हजूम कर दिया। आप दौड़ते हुए मुसलमानों को पुकार रहे थे, इलैया इबादल्लाह, इलैया इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, मगर लोग बदख्वासी में कुछ नहीं सुन रहे थे। एक नाजुक लम्हा ऐसा आया, सिर्फ 11 रुफका आपके गिर्द रह गए। तो आकर अल्लाह हमें इन 11 में कर ले, जो फतह और शिकस्त में खड़े रहें, जो मालो दौलत को बटता देकर, खाना खुलता देकर अपनी जगह न छोड़ें। मौका पाकर अब्दुल्ला बिन खुमैया ने चेहरे मुबारक पर तलवार मारी, जिससे मेघफर की कड़ियाँ टूट कर जबड़े में घड़ गईं। मेघफर वो टोपी जिसके नीचे संगलियाँ सी लहरा रही होती हैं, यानी हिफाजत के लिए एक लोहे की टोपी जो पहनाई जाती थी उस दौर में, उसकी तरफ इशारा है। एक बार दुश्मन के हजूम की वजह से अब गड़े में गिर गए और कुछ चोटें भी आईं, लेकिन मुट्ठी भर रफका ने दौरे नौ के इस इस्लामी नकीब का बचाव करने में, जिसका वजूद तहरीक इस्लामी की रूहें रवां था, ऐसी फिदाकारी का मुजाहरा किया कि इसकी मुश्किल से ही कोई मिसाल तारीख के दूसरे अबवाब में मिल सकती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस महशर अंगेज़ लम्हे में जमे खड़े रहना, बल्कि चौकस रहते हुए मुदाफ़ियत करना, रुबई बिन खल्फ की गर्दन पर अपने हरबे से खुद ज़ख़म लगाना गैर मामूली शुजात का सबूत है। ताहम इस मौके पर हुजूर के ज़ख्मी होने और गड़े में गिरकर निगाहों से उजल होने और फिर आपके हम शुबाहत मुस्तफ़ बिन उमैर के शहीद हो जाने की बिना पर मुखालफीन ने नबी सल्लम की वफ़ात का गुल मचा दिया। इससे मुसलमानों में और ज़्यादा परेशानी फैल गई। इस गुलगुले का रद्द अमल दो गुना हुआ, यानी दुगना नुकसान हुआ। हज़रत उमर ने हथियार फेंक कर कहा, अब लड़के क्या लेना जबकि रसूलुल्लाह भी शहीद हो गए। इन पर नबी सल्लम की मोहब्बत का इतना गलबा था कि इनकी निगाह में इस सबसे कीमती मता को खो देने के बाद बड़ी से बड़ी फतह भी फतह न थी। इब्ने नज़र जो हज़रत अनस अंसारी के चचा थे, उन्होंने ये सुना तो कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। और फिर इस बेजिगरी से लड़े के चंद ही लम्हों में 80 से ज़्यादा ज़ख्मों की लज्जत समेट कर शहादत का प्याला लबों से लगा लिया। बहरहाल इस परेशानी और बदहवासी के आलम में मुसलमान मुसलमानों की इज्जत पर आए, यहाँ तक हज़रत हुज़ैफ़ा के वालिद अपने ही रफ़ीकों की तलवारों से शहीद हो गए। फिर हालत पलटना शुरू हुई। हर मुस्लिम सिपाही अपनी अपनी जगह तलवारों में घिरा हुआ था और नबी सल्लम को देखने के लिए बेताब। सोचिए ज़रा उस वक्त नबी सल्लम के दिल की हालत देखकर सहाबा के दिल पे क्या गुजरी होगी। देखिए, अब किसी अपने प्यारे के चेहरे पे ज़ख्म देखना, उसको फिज़िकली हर्ट होता देखना कितना तकलीफ़ अमर होता है। अल्लाह बचा के रखे किसी के हाथ से, किसी की तकलीफ़ से। और जो सहाबा का प्यार था नबी के लिए, वो तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लिहाजा सबसे पहले काब बिन मालिक ने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और पुकार कर कहा, मुसलमानों, ये रहे अल्लाह के रसूल। अब यहाँ ज़रा उस खुशी को तो महसूस कीजिए, ये तो ऐसी है कि जैसे मुर्दा जिंदा हो जाए, फिर कितनी खुशी होती है। सहाबा के लिए ये लम्हा वाकई बड़ी खुशी का था। फिर जू जू ये खबर फैलती गई, मुस्लिम सिपाहियों में नई जिंदगी दौड़ने लगी। जान देने वाले हर तरफ से मरकज़ की तरफ सिमटते गए। दुश्मनों का हजूम कम होने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी पर चले गए। अबू सुफियान ने उधर का रुख किया तो सहाबा ने बुलंदी से पत्थर बरसा कर इसे लौटा दिया। कितने आंखें खोल के रखते थे सहाबा। अब देखिए सहाबा कितने बेदार मग़ज़ थे ना, हर मौके पे वक्त हालात की नब्ज़ पे हाथ रखते थे। अब दुश्मन को अंदेशा हुआ कि इसे जो इत्तफाकी गलबा हासिल हो चुका है, कहीं वो हाथ से जाता ना रह जाए, लिहाजा मक्की फ़ौज के दस्ते भी सिमटने लगे। अबू सुफियान ने मुकाबिल की एक पहाड़ी पर चढ़कर नबी सल्लम के मुतल्लिक यकीनी मालूमात हासिल करना चाहिए। आखिर इसने बुलंद आवाज़ से नबी सल्लम और अबू बकर और उमर के नाम लेकर पुकारा कि है कोई। इधर से मसलहतन कोई जवाब न दिया गया तो कहने लगे, सब मारे गए। हज़रत उमर तड़प कर बोले, ओ अल्लाह के दुश्मन, हम सब जिंदा और सलामत हैं। अबू सुफियान ने नारा लगाया, ए खुबल, तू सर बुलंद रहे। जवाब मिला, अल्लाह ही की ज़ात बुलंद बालातर है। अबू सुफियान ने फिर हाँक लगाई, हमारे साथ उज्जा है, तुम्हारे साथ इज्जा नहीं। इधर से पुकारा गया, अल्लाह हमारा आका है, तुम्हारा कोई आका नहीं। दरअसल इन मुख्तसर नारों में वो दो नज़रियात बोल रहे थे जिनके टकराव ने तारीख में ये सारा मतजर पैदा किया था। इसको हाईलाइट करें, कुफर और इस्लाम, हक और बातिल, ये दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं। आपको पाकिस्तान बनने से पहले का दो कौमी नज़रिया भी याद आना चाहिए। उसकी बुनियाद क्या थी कि मुस्लिम मुस्लिम है, हिंदू हिंदू है। आज दोबारा ये बात उठने लग गई, नहीं हम सब एक हैं। याद रखिए, मुसलमान कभी किसी दूसरे के साथ नाम जोड़ कर ये नहीं कहता हम एक हैं, लेकिन दूसरे हमेशा मुसलमानों को देखकर कहते हैं, हम में और आप में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं। अगर हम और आप में फ़र्क नहीं तो किस में फ़र्क होगा। तो याद रखिए, ये दो नज़रियात होते हैं जिसके मुताबिक फिर कोशिशों का रुख मुतय्यन होता है। इस मार्के में 70 मुसलमान शहीद हुए और 40 ज़ख्मी। दूसरी तरफ मुखालिफ फ़ौज के सिर्फ 30 आदमी मौत के घाट उतारे जा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा बहादुर जरनैल और आपके फुफेरे भाई यानी फुफोजाद भाई अब्दुल्ला बिन जहश जी मर्तबत सहाबा में से थे। मुस्तफ़ बिन उमैर, हंजला बिन अबी आमिर, राफे बिन मालिक बिन अजलान, हरसा, यानी ये तीनों जो थे बैत हाय उकबा में शरीक हुए, यानी जितने नाम हैं ये सब बैत अकबा में शामिल हुए थे। अब्दुल्ला बिन अमर खजरजी, अमर बिन जमूह और मुत कई बदरी सहाबी दुनिया की अज़ीम तरीन सच्चाई के शजरे तैबा को अपने खून से सैराब कर गए, यानी मुसलमानों को जानी नुकसान मिला। बहरहाल जो ही मुस्लिम फ़ौज अपने आपे में आई और हाई कमांडर से इसका ताल्लुक जुड़ा, इनकलाबे दुश्मन ताकत जल्द जल्द पीछे हटकर मैदान जंग से कूच कर गई, क्योंकि वो फतह जो थोड़ी बहुत उनको मिली थी उसको खोना नहीं चाहते थे। इसी तरह इत्तफाकी फतह के पर्दे में छुपी हुई कमज़ोरी का पोल खुल गया और मुस्लिम फ़ौज ने एक बार फिर अपना वज़न महसूस किया। इससे क्या पता चलता है कि अगर गलती हो जाए या नाकामी हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, आइंदा के लिए दोबारा से ताकत जमा कर लीजिए। मुसलमानों ने अपनी एक लर्जिश के सबब नुकसान ज़रूर उठाया था, लेकिन ना वो शिकस्त खुर्दा थे ना ही कुव्वत ने कोई खम खाया। चुनाच अल्लाह के नबी के इरशाद से 70 आदमियों का एक दस्ता कुरैशी फ़ौज के ताकुब को निकला। इधर अबू सुफियान रौहा के मुकाम पर पहुँच कर जब सूरत हाल का जायज़ा लिया तो इसे सख्त पशीमानी हुई कि उहद की हासिल शुदा फतह का तुर्रा तो वो जल्दी में मैदान उहद में छोड़ आया, यानी वो झंडा तो लहरा ही ना सका जो फतह के बाद लहराया जाता था, और मदीना की कुव्वत को चिकना चूर करने का काम ना तमाम रह गया था। यानी अगर इस वक्त दोबारा ये हमला करते तो मुसलमान तो पहले ही बहुत तकलीफ़ में थे, तो ख़तरा था ना कि मदीना पे इनका कब्ज़ा होता, तो ये वो भी ना कर सके। अब इसे तलाफी मफाद की फ़िक्र हुई, मगर बाद उस वक्त यानी वक्त गुजरने के बाद अब अपनी कमियों को या अपने नुकसान को पूरा करना तो ये नहीं होता। कहते हैं कि गोया कि ये क्या है कि जंग के बाद अगर इंसान को कोई बात याद आए तो उसका क्या किया जाए। अल्लाह के नबी को पहले से इसका अंदेशा था। आप मदीना वापस जाने की बजाय अपनी पूरी फ़ौज साथ लेकर मदीना से 8 मील दूर मकाम हमराउल असद तक जा पहुँचे। इसी असना में कबीला खुजाया जो इस्लाम नहीं लाया था मगर इस्लामी हुकूमत का दिल से हिमायती था, इसने अबू सुफियान को बजाते खुद जाकर खौफ दिलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी कुव्वत लेकर आए हैं, और इस खबर से हरासा होकर अबू सुफियान रुखसत हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। यही है वो हमरा उल असद जंग जिसका तذکرہ हमें सूरत आले इमरान में मिलता है। तो बात सारी यही है, हक हक है बातिल बातिल है, हक का साथ देने वालों के जज्बे और बातिल का साथ देने वालों की कोशिशें एक जैसी नहीं हो सकती। निकल कर सारे ही आते हैं लेकिन मकसद अलग होते हैं, जिससे फिर सोचें बदल जाती हैं, जिससे हालात बदल जाते हैं। करना क्या है, अपने लिए अमल की राहें मुरतब करनी है, किस तरीके से अपने आप को इन सारी चीज़ों के काबिल करना है। और ये भी याद रखिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गिरोह तैयार किया था ना, वाकई वो नाकाबिले तस्खीर था। सिमट कर पहाड़ इनकी खैबत से राई थे, सहाबा की हैबत दुश्मनों के दिलों पे थी। वजह सहाबा का ईमान, उनके कपड़े जूते घर गाड़ियाँ हाथों में पकड़े सेलफोन उनकी इज्जत नहीं थे, उनकी इज्जत थी अल्लाह से ताल्लुक़ में, अल्लाह से प्यार में। और जितना ज़्यादा एक बंदे में जितना अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत होती है ना, उतनी उसकी पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, लोगों के दिल उसकी तरफ खींचते हैं, उससे प्यार और मोहब्बत महसूस करते हैं लोग। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ईमान से मुज़य्यन कर दे। सूरत हुजरात में भी आता है ना, ज़य्यन कुलूबहुम, कि अल्लाह ने उनके दिलों को जीनत दे दी थी ईमान से। याद रखिए कि जाहिर में जो कुछ हो रहा होता है ना वो बज़ाहर होता है, लेकिन दूसरी चीज़ें जो हैं वो अंदर की होती हैं। इस बात की ख्वाहिश और तमन्ना भी रखिए कि हम ऐसे वक्त में अपना ईमान कितना महसूस करते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर वासन जज़ा। सुबहानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।